वहीं हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है।
तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी।
हेलो सौरभ, कैसे हैं आप?
बस प्रणय, सबकी तरह बुरा हाल है।
हाँ, बुरा हाल अभी भी कायम है। तो इस बार उस बुरी हालत के कारण के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि अब जैसे सौरभ आपने सुना होगा, ये कुछ लोग कोरोना वायरस पैंडेमिक जो चल रहा है उसे इन्फोडेमिक भी कह रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हर चीज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी डगमगा गई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम करता है, कुछ कहते हैं नहीं काम करता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग काफी है, कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग बहुत कम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब नौसिखिए लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सब एक्सपर्ट लोग भी इस बारे में कंफ्यूज्ड है, तो इसे समझना थोड़ा जरूरी है मुझे लग रहा है।
हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब एक मुझे लगता है एक दुनिया में एक ऐसा माहौल भी बना हुआ है जहां पे कोई इन्फॉर्मेशन को ट्रस्ट नहीं करता है। एक जिसको कहते हैं ना कि एक जितना भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको डिस्क्रेडिट सा कर दिया गया है। तो ये इस माहौल में एक इस तरीके का कोरोना जैसा चीज होना मतलब एक डेंजरस चीज भी है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए सही इन्फॉर्मेशन और सब लोगों का कोऑर्डिनेटेड एक्शन काफी जरूरी है कि सब लोग मिलकर एक चीज करें ठीक से। तो अब ये ऐसे माहौल में अगर आप इन्फॉर्मेशन वगैरह को ही डिस्क्रेडिट करना शुरू कर दें और कहें कि हमें तो कुछ भी नहीं पता है, या कोई भी नंबर जो है उस पर हम कैसे भरोसा करें, अरे 400 ही केस कैसे, आप टेस्ट ही नहीं कर रहे तो आपको क्या पता कितने केस हैं, है ना? तो ये सब होना, आई मीन इस चीज के ऊपर से धुंध हटानी चाहिए।
हाँ, तो इसी से जुड़ा हुआ आज का विषय भी है हमारा। हम लोग थोड़ा टेस्टिंग और ये इम्यूनिटी वैक्सीनेशन इनको थोड़ा ब्रॉडर स्कोप में समझने की कोशिश करते हैं, और इसे समझाने के लिए हमारे साथ है पवन। पवन पिछली बार हमारे साथ स्पेस अंतरिक्ष स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस करने के लिए थे, और वैसे पवन बहुत विलक्षण प्रतिभा वाले इंसान है, स्पेस भी करते हैं और हिस्ट्री नर्ड भी है और बायोटेक उनका बैकग्राउंड भी है। तो हम लोगों ने सोचा पवन से ही बात किया जाए टेस्टिंग, इम्यूनिटी और वैक्सीन डेवलपमेंट पे। तो पवन स्वागत है आपका पुलियाबाजी।
नमस्ते प्रणय, नमस्ते सौरभ। और मैं तो इसमें विद्यार्थी हूँ, मैं भी एक पॉडकास्ट होस्ट हूँ, तो पिछले कई हफ्ते में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है COVID-19 पर। तो एक्सपर्ट के साथ जो मैंने सीखा है, ऑनलाइन भी मैंने जो पढ़ा है, थोड़ा शेयर कर सकता हूं। और इसमें एक बात है, हमें पता नहीं है।
हाँ,
ये सेंटेंस तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देता है, कहने की आती नहीं है, हमें पता नहीं है, एविडेंस नहीं है। ये जब हम नहीं कहते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम अटक जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। सब के लिए हमें आंसर तो चाहिए।
लोग बहुत कुछ दावे तो कर देते हैं लेकिन exactly. उसका क्या एविडेंस है वो हमें अभी तक पता नहीं है उसका।
और ये भी एक जो चीज है, आई मीन आपको जिसको बोलते हैं कि नहीं पता है के साथ में कंफर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं पता है तो उसके लिए हम जो है मूड हो जाए एकदम कि भाई अब पता नहीं कुछ भी, तो उसके बाद हम एकदम जड़ होके हम कुछ करें ही ना, है ना? एक पैरालिसिस नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत डेंजरस चीज है। तो कैसे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ में बढ़ा जाए आगे सही डायरेक्शन में, ये जो करंट सिचुएशन है ये उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ में हम कैसे आगे बढ़े, क्योंकि परफेक्ट इंफॉर्मेशन का वेट नहीं कर सकते, वो हमारे पास में अभी लग्जरी है नहीं।
बिल्कुल। और एक्चुअली हमें जब अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन या एविडेंस नहीं है उसके ऊपर हमें और भी रिसर्च करना चाहिए। अभी जो हमें पता है COVID-19 पर, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी साइंस है, ये हमें कैसे पता है, क्योंकि एटलीस्ट दिसंबर नहीं तो जनवरी से तो बहुत सारा रिसर्च आया है, चाइना से आया है, यूएस से, सब तरफ से, और इससे हर हफ्ता हमें और भी अच्छा सा पिक्चर दिख रहा है, कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, उस टेस्टिंग का लिमिटेशन क्या है, सरकार कैसे काम कर सकती है, इम्यूनिटी का कैसे बढ़ रहा है, ये सब हफ्ते पर हफ्ते हमें बेटर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बट बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। आप जो कह रहे थे ये इन्फॉर्मेशन का पैंडेमिक जो है, ये तो रिसर्चर्स में भी है।
मैंने तो नंबर जो सुना पवन, कुछ 3,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स पूरे पीयर अभी रिव्यूड नहीं है, लेकिन आजकल जैसा ट्रेंड है लोग रिसर्च पेपर इवन रिव्यू से पहले पब्लिश कर रहे हैं, तो प्री पब्लिकेशंस आ रही हैं, पर सिर्फ 3 महीने में इसके ऊपर 3,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, तो एस्टोनिशिंग नंबर है।
3,000 से बहुत ज्यादा, क्योंकि आप मॉडलिंग साइंस, बेसिक साइंस, ट्रायल्स सब अब जुड़ मिलाते हैं, तो इससे भी ज्यादा नंबर भी आ सकता है। तो इस समय हम बहुत सारे कोलैबोरेशन देख रहे हैं। हमारे देश में जो मैथमेटिकल मॉडल्स आ रहे हैं, वो तो कोलैबोरेशन इन लोगों ने इस रिसर्च के पहले कभी नहीं मिला है, तो वो मिलजुल कर रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सेलेंट थिंग्स आ रहे हैं। पर जो आपने कहा, ये पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है साइंस में, एक बहुत बार 1-2 साल लगता है। मुझे पता है, मैं कुछ रिसर्च, एक 2007 में मैंने कुछ किया था, उसके ऊपर 2010 तक और लोग भी काम किया उन्होंने, 2014 में पब्लिश हुआ जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो तब तो मैं पब्लिक पॉलिसी में काम कर रहा था। तो वो पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत ही लंबा है। एक जर्नल पे भेजो, रिजेक्ट होता है, दूसरे जर्नल, वो सब।
अपने श्रोताओं को बैकग्राउंड देने के लिए, मतलब पवन एक जमाने में बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा था,
उससे मैंने क्विट किया, बायोफिजिक्स में कर रहा था। तो पर बायोसाइंसेस मैंने अंडर ग्रेजुएट में पढ़ा था, और अब तो थोड़ा लाइफ साइंसेस इसमें इंटरेस्ट है, पॉलिसी में इंटरेस्ट है, और ये COVID-19 के ऊपर आई हैड द प्रिविलेज बहुत सारे एक्सपर्ट्स, रियल एक्सपर्ट्स और गेस्ट के साथ बातचीत करके मैं यहाँ पर मेरी ब्रोकन हिंदी में आपके साथ बात कर रहा हूँ।
तो शुरुआत सबसे पहले ये टेस्टिंग वाले सवाल से ही करते हैं पवन, क्योंकि
हाँ
इसके बारे में भी बहुत सारी अटकलें हैं। कुछ लोग कहते हैं टेस्टिंग ज्यादा है, कम है वगैरह, तो इसको ही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, जो टेस्टिंग कहते हैं लोग की करनी चाहिए ज्यादा COVID-19 की, तो कितने प्रकार की टेस्ट है पहले, और क्या क्या फर्क है इनमें?
और एक जो ये मूल आर्गुमेंट है ना, उसको डील करना है इस क्वेश्चन में, इसके बाद में, कि भाई अगर हमको दिख रहा है कि मतलब जो जो भी नंबर ले लें, 1,000 लोगों को है कोरोना, कि 10,000 को है, कि तो टेस्ट करते हैं तभी पता चलता है। तो अगर हमने टेस्ट ही नहीं किए तो पता नहीं चला, तो हमने हमने क्या इतने लोगों को टेस्ट किया कि हमें पता ये जो नंबर है इस पे हम कितना भरोसा करें? तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको डील करना है।
हाँ, और नंबर्स में तो ये पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। हमारे देश में तो नंबर्स का प्रॉब्लम सभी लोग जगह पे है। हमारे डेथ सर्टिफिकेट्स आप लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट में कॉज ऑफ डेथ जो है, हमारे यहाँ पर पोस्टमार्टम रेट तो बहुत कम है, और पोस्टमार्टम में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉज ऑफ डेथ सही से लिखना है। बहुत सारे बार लोग हार्ट अटैक, लंग फेलियर, ऑर्गन फेलियर, ऐसे कॉज को, कॉज नहीं, सिम्टम को देते हैं, इमीडिएट कॉज।
सबसे कॉमन इंडिया में कार्डियक अरेस्ट।
हाँ, बट क्यों हुआ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट तो फाइनल स्टेज है ना,
कार्डियक अरेस्ट
तो
मतलब दिल धड़कना बंद हो गया, उसी को तो मौत बोलते हैं।
एग्जैक्टली।
तो पोस्टमार्टम में हमने लिख दिया इस आदमी का कारण, मौत का कारण है कि इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हो
तो
गई।
इसका हमारे पास बहुत ही एविडेंस है। COVID-19 के पहले से भी, जब डेंगू से मरण हुआ, उसको और कोई कार्डियक अरेस्ट या और कोई रीजन दिया, तो अभी तो से कोई कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल तक आते हैं, वहीं पर अब उनका मरण हो जाता है। होने पर कोई टेस्टिंग नहीं करता है, क्योंकि सेम लॉजिक यूज करते हैं। देखिए, हमारे पास टेस्ट काफी नहीं है, क्यों उन पर टेस्ट करना है? लाइव पेशेंट्स पे हम टेस्ट करेंगे, फिर एक्शन ले सकते हैं हम। तो इस बहुत सारे कारणों से ये टेस्ट टेस्टिंग और काउंटिंग जो है ये बहुत ही कठिन है सब देशों में, इंडिया में एक्स्ट्रा। तो टेस्टिंग पर आते हैं, तो मेन तो दो तरफ के टेस्टिंग है कोविड 19 पर। एक जो है हम न्यूक्लिक एसिड टेस्ट बोल सकते हैं, नहीं तो आरटीपीसीआर टेस्ट आपने नाम सुना होगा। दूसरा कैटेगरी जो है एंटीबॉडी टेस्ट है। तो ये दोनों कैटेगरीज है, इनमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, फ्लेवर्स होंगे, अलग अलग कंपनीज जो है ये टेस्ट में अलग अलग टारगेट को देखकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इन सब टेस्ट में एक्यूरेसी जो है अलग होता है। तो पहले हम ये आरटीपीसीआर ये या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यही मेन टेस्ट है। अप्रैल 21 तक हमारे देश में 4.6 लाख टेस्ट हमने किया है।
अच्छा,
ये तो कम स्मॉल नंबर नहीं है, पर हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा नंबर भी नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे देश तो लाइक आप कर्नाटका लीजिए या तमिलनाडु लीजिए, कर्नाटका यूके के साइज का है, और यूके में उनका एक पॉलिटिकल टारगेट है हम एक दिन में 1 लाख टेस्ट करेंगे, वहां तक जाना है हमें। अभी उन्होंने आई थिंक 20,000 या 25,000 पर डे क्रॉस नहीं किया टेस्ट। इंडिया में ऑल इंडिया अभी मैक्सिमम टेस्ट पर डे जो हमने किया है वो तो 35,490 है।
अच्छा,
द वायर साइंस जो ऑनलाइन मैगजीन है वहां पर एक बहुत अच्छा ट्रैकर है, बहुत सिंपल से ये टेस्ट काउंट सब दिखाते हैं। तो हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी, रियल टेस्टिंग कैपेसिटी जो है अभी के लिए एक दिन में मैक्सिमम 30,000 to 35,000 ये न्यूक्लिक एसिड या आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं।
अच्छा,
तो ये नंबर है। तो इससे हमें पता है कि हमारे देश में 16,600, ये तो 23 अप्रैल का नंबर है, 16,600 or 16,700 एक्टिव कोविड 19 केसेस हैं। तो ये एक्टिव केसेस है, एक्टिव टेस्टेड पॉजिटिव केसेस बस, रियल नंबर हमें पता नहीं, इससे ज्यादा होगा, कितना होगा पता नहीं, 2x होगा, 10 times होगा पता नहीं हमें। क्योंकि ये जो रोग है ये तो बहुत अजीब सा रोग है ना, ये हमारे कॉमन कोल्ड जैसा भी दिख सकता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाता है, और एक्सट्रीम निमोनिया और वेंटिलेटर यूज उस डायरेक्शन पर भी जाता है। ठीक है, तो
पवन, मैं अपने दिमाग में यूजुअली, मैं तुमसे वैलिडेट भी करना चाहता हूँ, तो मैं तो यूजुअली देखता हूँ, तो जैसे मैंने जो ज्यादातर नंबर देखे हैं कि यूजुअली अराउंड 8 से 10% लोगों को सीवियर केसेस हो रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो और हिंदुस्तान में हमारा एक जो तरीका है कि जब आपको सीवियर कुछ होता है तभी टेस्टिंग होती है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा आप बीमार है या फिर आप किसी सीवियर वाले के कांटेक्ट में आए हैं तो टेस्टिंग होती है ना। सो यूजुअली तो मैं अभी करंटली ऐसा मान के यूजुअली चलता हूँ, कोई भी नंबर मुझे दिखता है तो मैं बोलता हूँ लगभग 10 गुना होंगे उसके, ऐसा ऐसा ये अंदाजा बहुत बेकार अंदाजा है या ठीक अंदाजा है या कैसा अंदाजा है आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से 10 times तो एक अच्छा बॉल पार्क नंबर है, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा कॉशन के तरफ जाना है ना, हमें इसको और आराम से लेना नहीं है। और इसमें दूसरा प्रॉब्लम है, तो बहुत सीवियर केस है तो हॉस्पिटल जाने के पहले ही कुछ होता है तो हम वहां भी मिस कर सकते हैं,
वहां भी मिस करते हैं।
और हमारे देश में जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंजा केसेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस बहुत सारे हैं, तो बाकी देशों में वो जो प्रॉब्लम जब कम होता है और तो डायग्नोसिस सही तरह से करते हैं, वहां पर आपको सिग्नल आराम से मिलता है। तो सौरभ, आप लोग तो ये सिग्नल और नॉइस बहुत काम करते हैं ना, तो हमें सिग्नल चाहिए। इंडिया में नॉइस बहुत है क्योंकि सब इन्फेक्शंस बहुत हैं, तो इस कारण से इस कोविड 19 से ऐसे रेस्पिरेटरी इलनेस आ रहे हैं, तो वो बताना बहुत
और किसी को अगर थोड़ा माइल्ड है तो हो सकता है लोग तो यहाँ पे घर में ही पैरासिटामोल लेकर के उसका इलाज कर लेते हैं, तो और वो हो सकता है कोविड 19 भी माइल्ड हो और वो आप पैरासिटामोल खा के काम चला लिया, 10 दिन में ठीक हो गया।
हाँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी तो मोस्ट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक सब बंद है ना, प्राइवेट और ये सब. तो बेंगलोर का एग्जाम्पल देना है तो बेंगलोर में सरकार ने फीवर क्लिनिक ओपन किया है. कुछ बेंगलोर
अच्छा
सिटी में 30 क्लिनिक्स ओपन किए थे, अभी नंबर बढ़ चुका होगा. पर डे सब क्लिनिक में कुछ 200 या 300 टेस्ट कर रहे थे, स्क्रीनिंग पीपल के लिए.
अच्छा
ये पीसीआर वाला टेस्ट नहीं, सिर्फ स्क्रीनिंग.
ओके
आप बताइए, हमारे सिटी में कुछ क्या 12 मिलियन या कुछ लोग हैं.
हाँ, 1.25 करोड़ के करीब. हाँ
हाँ, और एक दिन में कितने लोगों को फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसा सिम्टम दिखता
रोज का 1 लाख से तो ज्यादा होगा, 1-2 लाख है ना.
है.
एक या मतलब खासकर बेंगलोर में तो खांसी जुकाम जो है वो सुबह बारिश हो जाए तो हो जाएगा,
हाँ.
थोड़ा पोलन ज्यादा हो गया तो हो जाएगा, किसी भी वजह से हो सकता है,
और
और इन
मार्च
जनरल
और अप्रैल,
इन्फेक्शन भी होते हैं. हाँ
और मार्च और अप्रैल उसका एक सीजन है क्योंकि
हाँ
ट्रांजिशन हो रहा
मार्च
है ना.
अप्रैल तो मार्च अप्रैल तो सबसे ज्यादा खांसी जुकाम का सीजन है यहाँ.
हाँ, और मॉनसून जब आता है और भी कुछ ऐसे वेव्स आएंगे. तो आपको वहीं पर दिख रहा होगा कितने लोग ये फीवर क्लिनिक को भी जाकर उनको बेसिक स्क्रीनिंग वो कर सकते हैं.
पर पवन एक सेकंड, बेसिक
हाँ
स्क्रीनिंग मतलब क्या, सिर्फ टेम्परेचर देखना, वो स्क्रीनिंग
हाँ
टेस्ट हुआ क्या?
टेम्परेचर. तो मेरे जो एक डॉक्टर फ्रेंड है, तलहटे पे गेस्ट जैसे आए थे, उन्होंने कहा जो भी ये लॉकडाउन से पहले उन्होंने सिर्फ कहा जो भी ऐसे सिम्टम्स से आता है उनका सिंपल एक ब्लड टेस्ट कर दीजिए. ब्लड टेस्ट में आपको दिख जाएगा कि उनका इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है. तो बैक्टीरियल है तो ऑटोमेटिक आप रूल आउट कर सकते हैं ना,
हाँ
वायरल है तो देखना पड़ेगा ये राइनो वायरस से आया है, इन्फ्लुएंजा से आया है और कुछ भी. तो ऐसे हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिंपल टेस्ट से कुछ अलग अलग मेजर्स कर सकते हैं. उसको नेशनल स्ट्रेटजी में हम कैसे जुड़ाएं वो तो अलग बात है, क्योंकि चाइना में जब वुहान में ये पूरा आउटब्रेक हुआ बहुत लोगों ने सिर्फ चेस्ट सीटी स्कैन बनाना शुरू किया, क्योंकि वो चेस्ट सीटी स्कैन में जब सीरियस इन्फेक्शन होता है आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स में जो पैटर्न आती है सीटी स्कैन से, उससे आप को कुछ 70% एक्यूरेसी से आप बता सकते हैं कि इनमें कुछ COVID-19 जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं. तो टेस्ट जो है बहुत सारे हैं, पर मेन कंफर्मेशन पक्का आपको बताना है कि इस पेशेंट में COVID-19 है तो आपको ये आरएनए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट आपको करना है.
बेसिकली हम उसमें आपके खून या आपके सलाइवा में देख रहे हैं कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमको मिलता है कि नहीं, तो वो तो एकदम अचूक तरीका हो गया. आप उसका इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप सीधा चेक कर रहे हैं कि यहाँ वायरस है कि नहीं.
हाँ, और नहीं इंडिया का टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है आपको थोड़ा बढ़ रहा है. हम मार्च और अप्रैल तक और मई तक हमने देखा है कि पहले आपको डायरेक्ट फॉरेन रिटर्न होना था, फिर फॉरेन रिटर्न प्लस सिम्टम्स और उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो आप भी क्वालिफाई हो सकते हैं ये टेस्ट के लिए. फिर उन्होंने कहा कि अस्पताल में आपको सारी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये सारी सिम्टम्स आप देख रहे हैं तो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं. फिर उन्होंने अभी स्लोली कहा है कि ये रैपिड टेस्ट के लिए हॉटस्पॉट जगह में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, माने कुछ भी फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसे कुछ भी जो आपको सिम्टम्स है तो हम टेस्ट करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग क्राइटेरिया अडेप्ट और इवॉल्व होकर आ रहे हैं. इसमें एक सप्लाई का कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि टेस्ट ज्यादा नहीं होंगे तो आपको ये रेशन कार्ड जैसे कुछ रेशनिंग करना है ना, किसको आप टेस्ट देंगे. तो ये सब चैलेंजेस हैं. पर टेस्ट के बारे में अब बात करूंगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है आपको आपने देखा होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन कर दिया कि ये टेस्ट प्राइवेट लैब में भी फ्री से करना है, इसको चार्ज नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट तो 4,500 रुपीस है. एक डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इतना पैसा हमने कभी भी खर्च नहीं किया. बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट ये डेंगी ऐसा जब टेस्ट जो आप लेते हैं 600 रुपीज, 1000 रुपीज, 1200 में आप काम खत्म कर सकते हैं। ये क्यों ऐसा एक्सपेंसिव टेस्ट है कि पहले ये ब्लड टेस्ट नहीं है, ये मेन टेस्ट जो है आपका सलाइवा या वो नेसोफेरेंजियल टेस्ट बोलते हैं, एक लॉन्ग आपको ये ईयरबड जो है ना, बेसिकली ऐसा एक स्वाब लेके आपके गले के अंदर से जो वहां का स्किन है ना, वो सेल्स थोड़ा लेके उसको टेस्ट करते हैं।
अच्छा
तो इस टेस्ट में बेसिकली क्या है कि आप देख रहे हैं कि वो सेल्स जो है वहां पर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उन सेल्स में ये वायरस घुस गया है या नहीं,
अच्छा
वो टेस्ट है। तो वो कैसे करते हैं कि वो ये COVID-19 या SARS-CoV-2 वायरस है, ये तो एक आरएनए वायरस है, तो इसका मेन इंफॉर्मेशन, मेन जेनेटिक कोड कैसा काम करता है, ये सब आरएनए में स्टोर हुआ है। हमारे शरीर में तो डीएनए है, आरएनए सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्टेप है। डीएनए बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, आप बहुत आराम से इवन पानी में रह सकता है, और सिर्फ सेल्स में नहीं, आरएनए बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है।
अच्छा
हमारे सेल्स में अच्छा दिखता है, टेस्ट ट्यूब में आप लेते हैं तो गायब हो जाता है। मैं 10 साल पहले थोड़ा आरएनए के साथ काम कर रहा था, उसके लिए पानी भी जो है आप यूज कर सकते हैं ना ये लैब में, उसको एक स्पेशल आरएनएस फ्री वाटर बुलाते हैं हम, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में भी कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ कुछ एंजाइम होगा, ये जो भी आरएनए है सब डिस्ट्रॉय कर देगा
अच्छा
विद इन नो टाइम।
अच्छा
तो ये टेस्ट जो है, सो पहले क्या करना है, कोई भी पेशेंट या सस्पेक्टेड केस हो उनके घर जाके या अस्पताल में पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पूरा पहन के, ये सब सिंगल यूज है, पूरा पहन के आपको ये स्वाब लेना है, क्योंकि ये स्वाब लेने के समय भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। हाँ, बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि आप बोलते हैं ना ओपन योर माउथ वाइड एंड देन वहां पे स्टिक डाल के ऐसे, तो
तो सीधे आप शेर के मुंह में ही हाथ डाल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल क्यों। सो एक्चुअली ये 4500 रुपीज में मुझे कुछ लोगों ने शेयर किया कि 1500 रुपीज सिर्फ कलेक्शन में जाता है, तो बाकी सब टेस्ट ना, आप जब ब्लड टेस्ट लेते हैं वहां पर भी आपको ऐसे इन्फेक्शियस डिजीजेस समय पर बहुत ही प्रोटेक्शन लेना है। पर हमारा स्किन जो है ये तो बहुत बढ़िया ऑर्गन है, हमारा स्किन बेस्ट डिफेंस है सब ऑर्गेनिज्म सब इन्फेक्शन से। सो आप केयरफुली, अब आप ब्लड टेस्ट जब लेते हैं, वो अल्कोहल स्वाब जब करते हैं, इन्फेक्शन रेट तो बहुत कम है, ट्रांसमिशन ऐसे, पर ये पीसीआर टेस्ट आप ब्लड से नहीं लेते, आप डायरेक्ट टिश्यू लेते हैं, आपका सलाइवा, आपका ये थ्रोट वाला सेल्स वो सब, तो उसको लेकर आपको कोल्ड स्टोरेज में लैब तक लेके जाना है। तो अभी भारत में कुछ 30-40 लैब और बहुत सारे प्राइवेट लैब सब ओपन किया है लोगों ने, तो वहां तक जाना है। अभी तो कुरियर सिस्टम बंद है, बहुत सारे कार्गो फ्लाइट्स भी कम हुए हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट ही बहुत कठिन काम है। ये सब के लिए 100-1500 रुपए, ठीक है। तो मेन टेस्टिंग के लिए अभी बहुत सारे प्राइवेट लैब्स भी कह रहे हैं हम सिर्फ कॉस्ट पे टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारा प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं, इसको 3000 रुपीज। ये क्यों इतना कॉस्टली है कि ऐसा टेस्ट हमने इंडिया में पहली बार हम इस स्केल पे कर रहे हैं। ये टेस्ट आप डायरेक्ट वायरस का आरएनए इस सैंपल में है कि नहीं आप बता रहे हैं हमें, आप डेंगी या और कोई वायरल डिसीज लीजिए, ऐसा टेस्ट हम नहीं करते हैं। सिर्फ ये एंटीबॉडी माने हमारे ह्यूमन बॉडी का रेस्पॉन्स जो है इस वायरस पर, उस रेस्पॉन्स है कि नहीं उसको टेस्ट करते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हम ब्लड से लेकर। सो उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये स्टेप्स जो है, आप ये सैंपल लेते हैं, लैब तक लेके जाते हैं, लैब पर लेके जाने पर उसको आप वो सेल सबको ब्रेक करके सब मटेरियल सेपरेट करना है, और सिर्फ वहां पर वो सैंपल में सारी जो आरएनए है उसको आप अलग करना है उसको। तो वो प्रोसेस, वो किट भी जो है ग्लोबली अभी शॉर्टेज में है।
अच्छा,
इंडिया में अभी हमारे टेस्टिंग लेवल्स पर ये अभी बॉटलनेक नहीं हुआ है, पर स्केलिंग के लिए वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मेनली उसका सप्लायर सिर्फ दो कंपनीज हैं, रोश और कियाजेन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो वहां पर एक बॉटलनेक है, फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना है, और फिर वो आप क्या करते हैं कि एक पीसीआर टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं हमारे संविधान का एक एग्जाम्पल लेता हूं,
अच्छा।
ठीक है? तो आप सोचिए कि आप बहुत बड़ा एक टेक्स्ट देख रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी पेपर है, पेपर में आप प्लेजरिज्म चेक वो सब हम करते हैं ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर सब है।
बेसिक कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है।
हाँ, तो आप देखिए कि नहीं, मुझे कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो दिखे तब मैं पॉजिटिव टेस्ट कह सकता हूं कि यहाँ पर प्रियम्बल है, जैसे वायरस है वहां पर प्रियम्बल है। ओके, तो इसके लिए लोगों ने दो प्राइमर क्रिएट किया है। तो ये वायरस का एक और स्पेशलिटी ये है कि पूरा वायरस जीनोम और जीन सीक्वेंस जो है, हाँ, और आरएनए सीक्वेंस पूरा हमने सीक्वेंस कर दिया है। ये वायरस म्यूटेट होता रहता है, पर ये सीक्वेंस इतने जल्दी से हमने जो सीक्वेंस किया है ये तो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि 20-20 ईयर्स से पहले ये तो बहुत मुश्किल का काम था। 1999 पे हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, और इस 20 साल में हमने जो डेवलपमेंट देखे हैं सीक्वेंसिंग पे, ये आरएनए एनालिसिस, पीसीआर, उसका कॉस्ट तो हर 2 साल या 3 साल 10 टाइम से रिड्यूस हुआ है।
अच्छा,
तो ये टेस्ट 4,500 रुपीज, 3,000 रुपीज जो है $50 है, या 50 भी नहीं और कम। तो
चालीस डॉलर
ये,
हाँ
हाँ, तो 5 साल पहले ये तो $1,000 हुआ होगा। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए इससे पहले इम्पॉसिबल हुआ होता। पूरी दुनिया में डायग्नोसिस के लिए ऐसे जो टेस्ट हैं सिर्फ कुछ 4-5 साल से लोग करते आ रहे हैं। ये जीका वायरस आउटब्रेक जो हुआ फ्लोरिडा और यूएस में, इबोला वायरस में, सिर्फ वहां पर ऐसे यूज किया है। तो ग्लोबली इस स्केल पर पहले कभी भी नहीं किया, इसीलिए ये तो स्पेशल और एक्सपेंसिव टेस्ट है। इंडिया में बहुत सारे जगह में इसका कैपेबिलिटी नहीं है, अभी बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग एक्टिवेट कर रहे हैं उनको लैब्स का सिस्टम्स और इक्विपमेंट सब, तो इसीलिए इतना स्पेशल है ये टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम, ओके, आपको हमारा प्रियम्बल देखना है, इस सैंपल में हमारा प्रियम्बल का,
कि कहीं कहीं लिखा हुआ दिख जाए हम भारत के लोग।
हाँ, क्योंकि ये पूरा टेक्स्ट है ना, इस आरएनए टेक्स्ट में डीएनए के तरह 4 लेटर्स हैं, तो ये 4 लेटर वाला लैंग्वेज है। आप उस लैंग्वेज में,
ATGC,
ATGC डीएनए में आता है, आरएनए में हम AUGC कहते हैं। सो डीएनए में जो ATGC है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, आरएनए में एडेनिन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन, तो पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, पर AUGC, ठीक है?
ठीक है।
तो ये लैंग्वेज जो है इसमें आप वो एक पैराग्राफ ढूंढ रहे हैं। तो पूरा वायरस में बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं ना, इसमें भी रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है कि कहाँ पर हम ढंग से हम रीड कर सकते हैं, कौन सा पैराग्राफ अच्छा है।
क्योंकि ऐसा चीज भी ढूंढना है जो बहुत जगह पे नहीं मिले, कोई यूनिक होना चाहिए ताकि उससे पता चले यही
हाँ,
वायरस है, और कोई आरएनए नहीं पकड़ लिया।
क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा वायरस होंगे होगा हमारे, सो ह्यूमंस में नहीं होना चाहिए और वायरसेस में नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत यूनिक होना चाहिए, राइट? सो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में एक स्टार्टिंग में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हैविंग सॉलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए, वो जो फ्रेज है वो यूनिक होगा, क्योंकि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नहीं दिखेगा और कहीं पर नहीं दिखेगा, तो वो एक यूनिक होगा। तो उसका एक सीक्वेंस जो है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, वो आरएनए में, वायरस आरएनए में है, उसका एक कॉम्प्लीमेंट जो है वो बनाकर वो एक प्राइमर बन जाता है। तो वो पहला प्राइमर। दूसरा प्राइमर, आप प्रियम्बल के एंड पे जाइए, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। और कितने सारे संविधान होंगे जो सिर्फ यही डेट पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के साथ बना हुआ होगा, और कहीं नहीं है ना। तो वो एक दूसरा प्राइमर बन सकता है। तो जब ये दो प्राइमर है आपके पास, और तीसरा जो है आप एक प्रोब बना सकते हैं। ये प्रोब जो है कुछ लाइन मिडिल पे, सो फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, ऐसे कुछ चीज उस सीक्वेंस पर आप एक कलर दिखाने वाली कॉम्पाउंड डालकर वो एक प्रोब बना देते हैं। तो ये तीनों चीज चाहिए और रिएजेंट्स के साथ। तो ये आरएनए आप जब लेते हैं उसको पहले फर्स्ट डीएनए कॉपी बनाना है आपको। सो आरएनए से डीएनए एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एक एंजाइम हम बताते हैं, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस करके फिर हमारे पास एक कुछ 40 और 45 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली क्या है कि एक लेबोरेटरी में, एक टेस्ट ट्यूब में हम और अलग अलग रिएजेंट डाल के हीट और टेम्परेचर चेंज करके हम डीएनए का एक कॉपी से 1,000, 1,000,000, 1 करोड़, 1,00,000 करोड़ कॉपीज हम कुछ 6-7 आवर्स में हम कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही अफोर्डेबल हुआ है। तो ये सैंपल डाल के आप सिर्फ ये सीक्वेंस, जो दोनों प्राइमर जो दिखता है उसी सीक्वेंस को आप एम्पलीफाई करते हैं। तो वायरस का एक ही कॉपी होगा या सिर्फ 10 कॉपी होंगे, उसको आप 10,00,000, 10,00,000 करोड़ कॉपीज बना सकते हैं।
अच्छा।
ये जो कॉपी बनता है इस प्रोसेस में, वो मिडिल वाला प्रोब हमने कहा ना, उसके साथ एक कुछ कलर दिखाने वाली कुछ कंपाउंड होगा, वो प्रोब भी यूज हो जाता है। तो वो कलर दिखाने वाली कंपाउंड सेपरेट हो जाती है। तो जिस ही टेस्ट ट्यूब या वेल पे आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा कलर या फ्लोरेसेंस दिखेगा, फिर आप कह सकते हैं कि इस सैंपल में हमें इस वायरस की आरएनए दिख रही है। ठीक है, इतने सारे स्टेप्स हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर वायरस की आरएनए हमें दिख रही है।
और ये कितना रिलायबल है पवन? आई मीन, इसमें कोई कभी गलती होने का चांस रहता है क्या, या फिर ये एकदम अचूक है?
सी, नो टेस्ट इज 100% परफेक्ट, वो तो आपको कभी नहीं मिलेगा। पर ये पीसीआर टेस्ट जो है, यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव तो बहुत कम है। तो ये आरएनए वायरस नहीं है तो आपको ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं दिखेगा। आरएनए वायरस तो होना ही है, तो उसका 0.5 या 1% से कम एरर रेट है। पर फॉल्स नेगेटिव जो है, आपके पास इन्फेक्शन होगा, वायरस होगा, पर ये टेस्ट
मिस हो गया।
हाँ, ये टेस्ट नेगेटिव दिखा सकता है,
मतलब वायरल लोड बहुत कम होगा जैसे आपका, तो इतना एम्पलीफाई नहीं,
वायरल लोड कम होगा, नहीं तो सैंपलिंग
स्वाब लेने में गड़बड़ हो गई। हाँ। सैंपल आपके यहाँ से वहां आते आते, जैसे आपने बोला आरएनए एनीवे इतना ज्यादा कमजोर टाइप की चीज है, वो गायब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तब तक।
एग्जैक्टली, तो उसमें प्रोटोकॉल तो अच्छे तरह से लोग फॉलो करते हैं, पर फॉल्स नेगेटिव तो आ सकता है। तो इसीलिए एक टेस्ट करना काफी नहीं है, बहुत बार मल्टीपल टेस्ट भी करना है। और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना टेस्ट काफी है, तो वो एक करेक्ट सवाल है। पर फॉल्स पॉजिटिव का प्रॉब्लम इसमें नहीं है, बाकी टेस्ट में होंगे।
अच्छा,
तो ये तो एक्सट्रीमली स्पेसिफिक टेस्ट होगा। और ये फॉल्स नेगेटिव जो है उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं इस डायग्नोस्टिक सर्कल्स में। वो सेंसिटिविटी में आपने जैसे कहा बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो मे बी 60% 70% 80% ऐसा सेंसिटिविटी दिखेगा। तो आप 100 पेशेंट लेंगे, 100 पेशेंट कोविड पॉजिटिव होंगे, उनमें आपको मे बी 70 या 60 पेशेंट्स को आप पॉजिटिव टेस्ट दिखा सकते हैं, पर ये फॉल्स पॉजिटिव तो ज्यादा नहीं होगा।
नहीं, सो ये बहुत अच्छी बात की पवन आपने कि इसमें फॉल्स पॉजिटिव कम है, मतलब अगर आपको कोरोना वायरस है तो काफी अच्छी चांस है कि वो पकड़ा जाएगा, है ना। तो ये एक चीज है कि मैं देख रहा था कि भारत में कितने 4 करोड़ लोग हर साल अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से पीड़ित रहते हैं। तो अगर हम लोग ये माने कि इन लोगों को तो भी टेस्ट करना ही है, क्योंकि इन तो इनके लिए पीसीआर टेस्ट यूज किया जा सकता है,
किया जा सकता है, पर कितने स्केल पे, कितने लोगों पर, कैसे और कब, ये सब हमें सोचना पड़ेगा ना। तो पर ये तो मेन टेस्ट है। ऐसे मैंने ये प्रीएम्बल का जो एग्जांपल दिया, ऐसे रिसर्चर्स ने बहुत सारे लोकेशंस फाइंड आउट किया है और सिर्फ एक टेस्ट नहीं करते, एक को टेस्ट करके फिर कॉन्फर्मेशन टेस्ट देते हैं। तो फाइनली जब रिजल्ट आता है आपको, वो तो फेयरली रिलायबल होगा, ठीक है, पर ये तो एक्सपेंसिव टेस्ट है, ये इसका स्केलिंग का कुछ हार्ड लिमिट तो होंगे। तो अभी आपने न्यूज पे सुना होगा कि रैपिड टेस्ट इंडिया में हमने खरीदा है, कुछ अलग अलग नंबर लोग देते हैं, इंडिया में कुछ 6 लाख या 7 लाख टेस्ट हमने ऑर्डर किया है, कर्नाटका में 65,000 टेस्ट हमने ऑर्डर किया है। ये तो रैपिड टेस्ट है, तो इसके बारे में हम बात करके फिर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बाद बारे में बात कर सकते हैं। तो ये रैपिड टेस्ट जो है ये तो और भी सिंपल है, ये ओल्डर टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है कि हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पांस मेनली हम मेजर करते हैं। तो आपको इन्फेक्शन जब होता है, विद इन फर्स्ट 2-3 डेज आपको ये पीसीआर टेस्ट आपको पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन आपके शरीर में है। पर जब इन्फेक्शन होता है उसके बाद यूजुअली एवरेज 8 या 9 दिन लेकर उसके बाद हमारा इम्यून रेस्पॉन्स डिटेक्ट होना शुरू होता है। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट आपको ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट 8 डेज जब आप हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, वहां पर आपने ये टेस्ट किया तो वो सही वाला रिजल्ट तो नहीं दिखाएगा।
जैसा डेंगू में होता है, डेंगू में भी तो यही, डेंगू में भी चेक करते हैं और डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि डेंगू में वो लोग 5 दिन बोलते हैं कि भाई 4-5 दिन बाद टेस्ट कराइए, पहले तो फायदा ही नहीं है चेक करने का।
सो डेंगू में मैं बताता हूँ, मुझे 2 बार डेंगू इन्फेक्शन हुआ है, मैंने 4 या 5 डेंगू टेस्ट लिया है। सो ऐसे ही डेंगू में 3 टेस्ट है, NS1, IgG और IgM। ये NS1 जो है ये वो डेंगू वायरस में एक प्रोटीन को सर्च करता है। वो ये NS1 तो आपको जब एक्चुअल सिम्टम आता है ना, उसी समय बहुत ही टाइम गायब हो जाता है। तो इसीलिए डेंगू डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद ये एक IgM है। तो हमारे बॉडी में ये इम्यून सिस्टम जो है ये 2 तरह से रेस्पॉन्ड करता है, वेरी ब्रॉडली। वन तो उसको सेल मीडिएटेड कहते हैं, हमारे टी सेल्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स में, ये HIV एड्स डिजीज में ये टी सेल्स ही HIV उनको मार देता है, तो इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा जो है बी सेल्स, वो बी सेल्स से ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज जो है आप देखिए, ये इम्यून सिस्टम हमारा हमारे शरीर का एक पुलिस सिस्टम, या उसमें पुलिस है, आर्मी है, CRPF है, सब है, राइट, ये इम्यून सिस्टम में। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ये IgG IgM जो है वो एक फर्स्ट रेस्पॉन्डर जैसे आप सोचिए। तो एक वायरस कुछ डिटेक्ट करता है तो पहले उसको डिटेक्ट करके अटैच करके फिर उसको लेके जाता है बाकी सब सिस्टम से। तो इसीलिए आपको जब इन्फेक्शन है आप आपको फ्लेम है वहां पर आपको पस दिखाई देती है ना, वो पस जो है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स इस इन्फेक्शन से फाइट करके उसको लिक्विफाई करके बाहर लेकर आता है किसी रूप पे। तो वो शुरू होता है इस इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्स के साथ। तो आप ऐसे सोचिए इसमें दो मेन एंटीबॉडीज है, एक तो आईजीजी दूसरा आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम। तो 8 या 9 दिन में ये आईजीएम का लेवल बढ़ता है और आईजीएम जो है आप वो थोड़ा स्टारफिश जैसा शेप पे दिखता है तो उसको पेंटामर कहते हैं। तो वो 8 दिन से कुछ 20 दिन एवरेज पर इन्फेक्शन से सिर्फ उसी टाइम पे वो एक्टिव होता है। आईजीजी जो है वो 20 दिन बाद आता है और 2 महीने तक रह सकता है। तो आप जब टेस्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओनली एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजीज एंड रिकवरी आपको ये टेस्ट और ये एंटीबॉडी ब्लड पे मिलेगा। हम अभी टेस्ट की एक्यूरेसी बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ क्या टेस्ट हो रहा है शरीर में क्या मिलेगा ब्लड में क्या मिलेगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी तो रिसर्चर्स ने देखा है कि कई लोगों में एटलीस्ट 2-5% इन्फेक्टेड पेशेंट्स में बहुत ही सीवियर सिम्टम्स भी होगा, कोविड पॉजिटिव पीसीआर टेस्ट में भी आएगा पर इम्यून सिस्टम और नहीं देख रहे हैं।
अच्छा तो एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं ऐसा है क्या?
बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, हम पता नहीं क्योंकि हमारा बॉडी इस वायरस को रेकग्नाइज करना है ना हमारे बॉडी को। कई लोगों में हमारे बॉडी के कुछ शक्ति नहीं है।
अच्छा
कोई रीजन से हम ये हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उसको नहीं डिटेक्ट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा और भी वायरसेस में होंगे। तो ये सब चैलेंजेस आएंगे सिर्फ ब्लड में क्या होगा और कब। ठीक है, नाउ इसके ऊपर टेस्ट जो है स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट को एलाइसा बुलाते हैं। सो इसका एक एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे कुछ फुल फॉर्म है पर बेसिकली उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है।
अच्छा।
तो रैपिड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि लैब जाके टेस्ट ट्यूब लेके ये सब नहीं करना है। तो आपको ये प्रेगनेंसी टेस्ट ऐसा टेस्ट आपने देखा होगा ना, बेसिकली आप इस एग्जाम्पल पे एक ड्रॉप ब्लड या कुछ एक पॉइंट पे डालकर वो माइक्रोफ्लूइडिक्स या वेरी टाइनी जो चैनल्स में उसको वो ब्लड सैंपल को लेकर वो ब्लड को ब्लड सेल्स सेपरेट करके ब्लड का जो सीरम प्लाज्मा है वो द लिक्विड जो है ब्लड में उसको लेकर कुछ रिएजेंट्स कुछ केमिकल्स के साथ रिएक्ट होकर आपको एक बैंड देखेगा ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसे एक स्ट्रिप टेस्ट या रैपिड टेस्ट जो है अभी डिप्लॉय हो रहा है शुरू हो रहा है। तो इससे आपको एक अंदाज में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एंटीबॉडी है या नहीं। पर ये टेस्ट वो पीसीआर टेस्ट से बहुत ही डिफरेंट है एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी पे।
तो ये समझ में आ गया, ये बहुत अच्छे से समझाया पवन आपने, ये दो टेस्टिंग जो है अब थोड़ा मुझे भी क्लियर हुआ, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन था।
और इसी से ये भी समझ में आता है कि हम सीधे अंधाधुंध टेस्टिंग करें तो उसका एक प्रॉब्लम भी है कि अगर जैसे पीसीआर टेस्ट तो अच्छा है लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट में तो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। तो हम अननेसेसरी बहुत सारे लोगों को डिक्लेयर करते रहे कि इनको भी कोरोना हुआ वायरस लगा हुआ है जबकि हो सकता है ना लगा। अगर आप मतलब मान लो 1% भी है तो बहुत बड़ा है, 1 करोड़ लोगों को टेस्ट किया तो 1,00,000 लोगों को हम अननेसेसरीली क्वारंटीन में डाल देंगे।
हाँ, तो अभी WHO से भी एक एडवाइजरी आया है, हमारा ICMR का टेस्टिंग प्रोटोकॉल आप देखते हैं तो वहां भी थोड़ा केयरफुल है। ऑफ कोर्स ये सब थियरी है, जब एक स्टेट गवर्नमेंट को ये टेस्ट मिले कौन सा स्ट्रेटजी से वो ये टेस्ट डिप्लॉय करेंगे, किसको करेंगे, कैसे, उसमें भी कुछ यू नो हमारे कम्युनिटी के लोगों को टेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ डाइवर्शन भी हो सकता है. तो मेन एडवाइजरी जो आया है कि ये एंटीबॉडी टेस्ट से इंडिविजुअल डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल है. ये टेस्ट जो है पॉपुलेशन लेवल डायग्नोसिस और या कम्युनिटी लेवल डायग्नोसिस के लिए अच्छा है, और उस कम्युनिटी, वो कम्युनिटी कोई भी साइज का होगा, एक वार्ड देखिए, एक स्लम देखिए, कुछ भी साइज, तो वहां पर एटलीस्ट कुछ मिनिमम लेवल ऑफ इन्फेक्शन जब होता है,
मान लीजिए किसी भी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अगर फैल गया है, तो आप वहां पे 400-500 लोगों को टेस्ट करके देख सकते हैं कि लगभग यहाँ 10% लोगों को है. वो कौन से 10% है वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हमको लगभग समझ में आ जाएगा कि कितना फैला है.
आपको रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पर 10%± 3% इन्फेक्शन है.
तो आप पूरे क्लस्टर को ही क्वारंटीन कर दो या लॉकडाउन कर दो या थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन ले लो. तो ये आपको थोड़ा पॉलिसी रिस्पांस के लिए फास्ट तरीका है, क्योंकि पीसीआर टेस्ट तो आप नहीं कर सकते इतने बड़े लोगों का.
हाँ, क्वारंटीन तो फर्स्ट रेस्पॉन्स है, फिर आपको सिम्टम्स चेक करना ही पड़ेगा हर दिन, दो दिन, दो बार, तीन बार. आपने स्विगी ऐप पे भी देखा होगा, हर 4 hours या 6 hours टेम्परेचर चेक्स करते हैं वो कुक्स के लिए, ट्रांसपोर्ट डिलीवरी के लिए, एटलीस्ट थियरी में. और ये सिम्टम टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कब ये सिम्टम बढ़ रहा है, किस पेशेंट को सीरियस केस हो रहा है, वो सिर्फ क्वारंटाइन से आप, क्वारंटाइन तो शुरू है, आइसोलेशन तो शुरू है, उसके बाद आपको अस्पताल लेके जाना है ना इन लोगों को, या तो करेक्ट एक्शन लेना है. तो वो सब हमें, वो एक कम्युनिटी लेवल, अपार्टमेंट लेवल, वार्ड लेवल, सिटी लेवल ऐसा कर सकता है. इसका दूसरा एक उपयोग यह है कि आप ये टेस्ट फिर से रिपीट करना है. तो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक आउटब्रेक हो गया समझ लीजिए, तो उसमें आपको मिला कि इन्फेक्शन रेट है 10±5%, पर मैंने कहा कि ये आईजीजी जो है वो तो दो महीने के बाद भी वो पॉजिटिव दिखाई देगा. तो आपको, आप 15 दिन या 1 महीने में आप सिर्फ फिर भी टेस्ट करेंगे, तो आपको नंबर सेम है या ज्यादा है ये देखना पड़ेगा. सेम है या स्टेबिलाइज होता है तो वो अच्छा है. तो फिर हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, एक स्टेबल हो गया है. और क्योंकि वो इम्यून रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में बहुत दिन रहता है ना, एटलीस्ट इन थियरी, तो वो वापस जीरो तक तो जाएगा नहीं जल्दी से.
हाँ.
और जाना भी नहीं है.
हाँ.
क्योंकि वो जीरो तक गया तो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स पूरा गायब हो गया. वो तो बहुत प्रॉब्लम है. ठीक है. तो ऐसे एक हॉटस्पॉट में कंटेन हम कर रहे हैं, तो ये एक सरकारी रेस्पॉन्स का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है एक लेवल पे. So, आप ढंग तरह से आप क्वारंटाइन ये सब कर रहे हैं या नहीं, उसका एक टेस्ट है.
अच्छा.
तो दोनों रूप में आप यूज कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल डायग्नोसिस के लिए आप स्क्रीन कीजिए, फिर सिम्टम्स है और टेस्ट पॉजिटिव है तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा कि ये कंफर्म्ड केस है या नहीं. वो तो वो एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है दूसरे स्टेप के लिए.
अच्छा. तो फिर इस सवाल पर आ जाते हैं पवन, तो अभी जो हमारी टेस्टिंग है वो क्या लगता है आपको, काफी है? अगर काफी नहीं है तो कैसे सोचना चाहिए, कितना एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए, कितना आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए? तो आपका क्या मानना है इसमें?
देखिए, नंबर बताना बहुत ही मुश्किल है. ये टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन, ये नंबर तो इंडिया के लिए जस्ट नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि इफ यूके में पर डे 1 लाख टेस्ट बहुत ही मुश्किल है, इंडिया पूरे देश में आप 1 लाख टेस्ट पर डे पर जाएंगे तो भी वो टेस्ट पर मिलियन में बहुत ही कम दिखेगा. हाँ, आपको.
हाँ, और मैंने देखा लोग इस कंपेयर कर रहे हैं आइसलैंड से या फिर छोटे छोटे म्युनिसिपैलिटी वाले, मतलब कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप, और उस कंपैरिजन का सिग्निफिकेंस भी क्या है?
हाँ, कुछ भी नहीं है। और सिंगापुर हम एक अभी स्टेट्स और सेंटर नेगोशिएट करके अलग अलग देशों से ये टेस्ट किट्स हम मंगवा रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ टेस्ट अभी अप्रूव हुआ है, तो पर ये नंबर गलत है। अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि टेस्टिंग लेवल अभी काफी नहीं है। हम सही तरह से टेस्टिंग क्राइटेरिया बना के फिर हम देख सकते हैं कि कितना टेस्ट इंडिविजुअल्स के लिए हम कर सकते हैं, कितना टेस्ट हम सर्वेलेंस लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ये आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट दोनों हमें सैंपल्स में भी करना है, जनरल पॉपुलेशन में नहीं, पर यू नो पीपल हु हैव इन्फ्लुएंजा इलनेस। अभी आईसीएमआर ने एक टेस्ट किया जो हॉस्पिटलाइज्ड सारी सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस पेशेंट्स हैं उन उनमें एक सैंपल टेस्ट उन्होंने किया, और उन्होंने देखा कि कुछ 2% ऑफ ऑल केसेस इन इंडिया कोविड पॉजिटिव टेस्ट आया था, ये मार्च में। अभी अप्रैल मई में ये नंबर कैसा होगा, ये भी एक इंडिया लेवल या स्टेट लेवल ऐसा टेस्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। पर यहाँ पर मैं एक दो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस डालूंगा नंबर आने से पहले। एक दो कॉम्प्लिकेशन ये है कि हम क्या टेस्ट यूज कर रहे हैं। एक तो एफडीए या यूरोप में जो अप्रूव हुआ है वो हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये अप्रूवल जो है रैपिड अप्रूवल आ रहा है, क्योंकि वी वांट टू पुश थिंग्स फॉरवर्ड। और बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स जब हम डालेंगे फिर कोई भी टेस्ट हमको नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है ये टेस्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट किट जो है वो अच्छी तरह से काम करती है या नहीं, वो टेस्ट अप्रूव हो जाता है। फिर ईच बैच में अच्छी तरह से कॉम्पाउंड्स आना चाहिए ना। एक बैच में एक कॉम्पाउंड, एक प्राइमर, एक रिएजेंट गलत हुआ तो आपका पूरा बैच टेस्टिंग आप रिलाय नहीं कर सकते। अभी तो इंडिया में भी ऐसे मुंबई से ऐसे रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड ओवर बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं। एक दो कंपनीज को लोग ब्लैकलिस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर हमें समझना है कि ऐसे रैपिड इंडस्ट्रियल स्केल अप जो हम कर रहे हैं वहां पर बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। एक स्मॉल मिस्टेक, मैंने कहा ना ये आरएनए कितना प्रॉब्लमेटिक चीज है, कैसे आराम से गायब हो सकता है, तो एक स्टेप में किसी ने एक रॉन्ग वाटर यूज किया या यू नो 4 डिग्री फ्रिज से बाहर 1 घंटा रख लिया बाय मिस्टेक, ऐसा कुछ भी एक स्टेप हुआ तो गलत हो सकता है। और इसके लिए बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल चेक्स ये सब है, फिर भी ऐसे अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में कुछ तो एरर स्लिप हो सकता है। तो अभी इंडिया में जो है हम संस्कृत में कहते हैं ना युद्ध काले शस्त्राभ्यासा, तो जब लड़ाई करना है तब हम सीखते हैं कैसे वेपन यूज करते हैं। तो इंडिया में भी, इंडिया का रेगुलेशन में भी ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोगों ने कहा एफडीए से क्यों हम वहां पर कैसे वेट कर सकते हैं, इंडियन टेस्ट जो है वहां तक भेजकर वहां का अप्रूवल लेना बहुत ही मुश्किल है इस समय में, तो हम ही वैलिडेट करेंगे। और फिर उन्होंने कहा सिर्फ एनआईवी नहीं, कुछ 4-5 नेशनल इंस्टीट्यूशंस हम लेंगे, वहां पर वो टेस्ट किट वैलिडेट होगा तो आप डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसा। सो पहली बार इंडिया में डायग्नोस्टिक रेगुलेशन एंड अप्रूवल हो रहा है, ये तो दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। बिकॉज इससे पहले हम वो डेंगू टेस्ट के बारे में भी बात कर रहे थे ना, इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि एनआईवी और सरकारी सप्लाई टेस्ट ही सरकार एक्सेप्ट करती है कि ये करेक्ट टेस्ट है। आप प्राइवेट लैब पे जो आप जाते हैं वहां पर टेस्ट करते हैं उसका क्वालिटी गवर्नमेंट ने कभी नहीं प्रॉपरली टेस्ट और रेगुलेट किया है। और कई रिसर्चर्स ने कहा है कि उनको भी पता नहीं प्राइवेट लैब में जो टेस्टिंग होता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एरर रेट क्या है, तो तो वो सिस्टमेटाइज करके उसको बता के फिर रेगुलेट करना, ये तो इंडिया में नया काम है. जस्ट लाइक हमारा ड्रग रेगुलेशन में भी, एफडीए में कुछ ड्रग पास होता है तो उसका सेम पेपर्स आप इंडिया में फाइल कर दीजिए, यहाँ हमारा ड्रग रेगुलेटर भी उस पर एक छापा डाल देता है और ड्रग्स मार्केट में मिल जाता है हमें. तो इंडिया में ये जो रेगुलेशन सिस्टम है ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स, ये सब के लिए, ये तो बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है. और इस कोविड-19 का एक पैंडेमिक जो है, इस समय में थोड़ा हमें अभी दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी कैपेसिटी और सिस्टम स्लोली डेवलप हो रहा है, पर उसमें प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे.
ठीक है, तो ये तो बात हो गई टेस्टिंग की। अब दूसरी एक चीज पर आ जाते हैं, जुड़ी हुई बात है ये इम्यूनिटी वाली चीज पर,
हाँ
है ना। तो लोग कितना कह रहे हैं कि अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक ऐसे स्पीच दिया था कि जो आयुष मंत्रालय ने कुछ नुस्खे दिए हैं उनका पालन करें, उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इस पर हम लोग कैसे सोचे?
देखिए, इस पर्टिकुलर डिजीज, ये कोविड-19 और ये वायरस पे हमारे लोगों में अभी तक रिसर्च से हमें क्या पता चला है कि इंसानों में इस पर कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है. तो और भी रिसर्च से मे भी हमें आंसर मिलेगा कि ट्रॉपिकल कंट्रीज, इंडिया जैसे जगह जहां पर बहुत सारे वायरस इलनेसेस हैं, बहुत सारा डिसीज लोड है, मे बी थोड़ा इम्यूनिटी स्पिल ओवर होगा हमारे पर, मे बी उससे हम ऐसे कम नंबर्स उसी से दिख रहा है.
मतलब इम्यूनिटी स्पिल ओवर, मतलब पवन ये क्या कि जो एंटीबॉडीज किसी और वायरस के लिए बनाए थे, शायद वो एंटीबॉडीज
हाँ,
इस वायरस के अगेंस्ट भी काम कर जाए ऐसा।
एंटीबॉडीज या कोई सेल्स, या ये कुछ ट्रेन्ड इम्यूनिटी कहते हैं. ये बीसीजी वैक्सीन का जो न्यूज आपने दिखा देखा होगा, वो तो वेरी प्रिलिमिनरी, सिर्फ एक कोरिलेशन वाला टेस्ट था, पर
अच्छा।
उस पे भी अभी ट्रायल्स शुरू हुआ है. वो बीसीजी वैक्सीन या कोई और कोई कारण से एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे इंडियन जैसे कंडीशंस में बहुत सारे लोगों पे कुछ नेचुरल इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस होगा शायद, पर अभी तक की रिसर्च में हम ये कोई भी डेफिनेट से नहीं कह सकते हैं. ये
अच्छा।
तो एक रिसर्च टॉपिक है, भारत में हमें इस पर हाई क्वालिटी रिसर्च करना चाहिए, अभी तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं आया है. तो ये इम्यून सिस्टम बढ़ाना, बूस्ट करना, देखिए हम मैंने कहा ना, ये इम्यून सिस्टम एक पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री फोर्स, ये सब कॉम्बिनेशन जैसा आपको हमें सोचना है. बॉडी का सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है. बहुत ही इम्यून बूस्ट किया तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर पर ही अटैक करना शुरू कर देगा, ठीक है. स्पेशली आप सोचिए, ये वायरस जो है हमारे सेल्स के अंदर है, तो जब इम्यून सिस्टम अटैक शुरू करता है, वो तो हमारे सेल्स पे ही अटैक करना शुरू करता है. तो आपने देखा होगा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर्स, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स पर अटैक करना शुरू हो जाता है. डेंगी में भी हमने देखा है कि आपको जब सेकेंड डेंगी इन्फेक्शन होता है, डेंगी में 4 स्ट्रेन्स है, एक स्ट्रेन से आप रिकवर होकर दूसरा स्ट्रेन जब आपको हिट करता है, वहां पर हम कहते हैं कि एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है. बेसिकली बॉडी जो है पूरा फुल फायर अलार्म पुल कर देता है और देखता है नहीं, सभी जगह इन्फेक्शन है, सबको मारो,
अच्छा।
एक लाठी चार्ज जैसे. सो लाठी चार्ज जब हम करते हैं, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हैं ना, और प्रॉब्लम हम बनाते हैं. तो इम्यून सिस्टम ऐसे वेरी सिंपली बूस्टिंग करना, ये सब साइंस में नहीं है, ठीक है. हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में हमारा इम्यून सिस्टम अलग अलग कारण से ढंग से नहीं काम कर रहा है. आपको विटामिन डिफिशियंसी होगी तो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स तो स्लो होगा. हमें बहुत ही सारा एविडेंस है कि सिर्फ एक से आपको कुछ वूंड होगा, आप गिर गए, कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो वहां पर वो वुंड हीलिंग जो है उसको लिए भी आपको विटामिन्स और मिनरल्स सब ढंग से चाहिए। तो मैं इम्यूनिटी बूस्टिंग छोड़िए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप हेल्थी फूड खाइए, अच्छी तरह से पानी पीए, और हेल्थी लाइफस्टाइल जब हम मेंटेन कर सकते हैं फिर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा।
तो इम्यून सिस्टम बेसिकली कुछ चीजों की वजह से खराब हो सकता है और आप वो डेफिशिएंसी पूरी कर सकते हैं, लेकिन एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को आप और ऐसे बूस्टिंग का कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि वैक्सीन लेकर के। हमारे पास एक ही एक तरीका है
हाँ
जिससे इम्यून सिस्टम में हम कोई नई कैपेबिलिटी ऐड कर देते हैं। जैसा अगर आपका एग्जांपल लें तो मतलब हम सीआरपीएफ की जगह एक आईटीबीपी भी ऐड कर दें, तो ये एक तरीका जो है वो सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने आप को वैक्सीन कराएं या फिर हमको वैसे ही कोई बीमारी हो जाए जिससे कि हमारी बॉडी को बॉडी सीख जाए कुछ नई 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 ट्रिक सीख जाए।
हाँ और यहाँ पर COVID-19 इन्फेक्शन हुआ तो हमें देखना है कि उस इन्फेक्शन से हम हमारी शरीर क्या सीख सकती है, वो उसमें भी हमारे पास पूरा का पूरा आंसर्स नहीं है, तो उसके बारे में कुछ 2-3 मिनट बात कर सकते हैं हम। तो अभी का रिसर्च जो कहता है ये IgG IgM ये सब टेस्ट में कहा ना, ये तो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है, ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, पर ये रेस्पॉन्स जो है हमें एक्सपोजर रेस्पॉन्स हम ये बुला सकते हैं। तो बेसिकली बॉडी इसको रेकग्नाइज करने की शक्ति उसमें आई है। ये कितने महीने तक रहेगी, ये परमानेंट रहेगी या नहीं, हम अभी नहीं कर सकते।
और परमानेंट तो शायद कुछ जैसे वैक्सीन्स भी जो है वो बड़े होके बूस्टर डोज वगैरह लेने पड़ते हैं क्योंकि
हाँ
और वो मेरे को समझ में भी आता है, मतलब बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज वगैरह या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी क्यों कैरी करेगी। एक आप जैसे जैसे देखेगा कि रिस्क कम है तो हम यूजली वो चीजें कम करती जाएगी बॉडी अपने आप ही शायद।
हाँ और ये इम्यून सिस्टम्स में कोई तरह के एंटीबॉडीज और भी कई साल रहेगी या पूरी लाइफ टाइम रहेगी, कोई टाइप्स आप मीजल्स वैक्सीन ऐसे कुछ लेंगे तो लाइफ में एक बार लिया तो काफी है,
काफी है। अच्छा
पर इन्फ्लुएंजा वायरस वो वायरस भी चेंज होता रहता है और ये वैक्सीन भी 1 साल रहता है, उसके बाद आपको फिर दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए।
हाँ,
और
इसीलिए हर साल में एक नया फ्लू वैक्सीन आता है।
हाँ इसीलिए तो वैक्सीन से पहले तो हमारा गोल ये है, आपने इटली और यूरोप में ऐसा कुछ कॉन्वर्जेशन सुना होगा कि ये इम्यूनिटी कार्ड या इम्यूनिटी पासपोर्ट हम बना सकते हैं,
हाँ,
क्योंकि
एक हर्ड इम्यूनिटी भी सुना है पवन।
हर्ड इम्यूनिटी पर आते हैं, पहले इंडिविजुअल पर बात करते हैं ना,
अच्छा,
अपनी इंडिविजुअल से
हाँ
पहले हर्ड के बात करने की कोई पॉइंट ही नहीं है।
हाँ
और हर्ड बोले तो झुंड की इम्यूनिटी।
हाँ झुंड या समाज की,
समाज।
एक्चुअली हर्ड तो हम प्राणियों में बात करते हैं ना, मनुष्यों में हम ये हर्ड की ये शब्द हम ये
हाँ
तो टेक्निकल टर्म है,
ठीक है,
समाज में इम्यूनिटी है या नहीं,
ओके,
ठीक है।
ठीक है, या कम्युनिटी लेवल इम्यूनिटी या समाज लेवल इम्यूनिटी, ये हर्ड एक गलत टर्म है।
ठीक है।
तो इंडिविजुअल इम्यूनिटी में हमें हमारा ट्रू गोल होना चाहिए कि हमारे शरीर में न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनिटी है या नहीं। ये डॉक्टर गगनदीप सिंह इंडिया के प्रॉसिबली टॉप वैक्सीनोलॉजिस्ट ने मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने बताया, ये न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनिटी जो है, तो आप सोचिए आपको एक बार COVID-19 इन्फेक्शन हुआ है, आप रिकवर हो गए हैं, 3 महीने बाद 1 साल बाद आपको फिर ये इन्फेक्शन आता है, आपका बॉडी इमीडिएटली इसको न्यूट्रलाइज करके निकाल देता है, तो वो लेवल इम्यूनिटी जो है वो रियल इम्यूनिटी है। तो हम वो जब डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका जो एक टेस्ट, अब वो किस लेवल पे वहां तक होंगे, कैसा टेस्ट करेंगे, ये सब हमें अभी तक पता नहीं। इनफैक्ट रिकवर्ड पेशेंट्स जब बाहर आके बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स में जब एनरोल करेंगे उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि अभी इन्फेक्शन बढ़ रहा है ना, इटली सब में बहुत सारे केसेस देखे हैं, एक दो महीने में बहुत सारे लोग रिकवर होके बाहर आएंगे, और उन लोगों का मदद तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां पर थोड़ा रिसर्च करके, उनका ब्लड सैंपल लेके रिसर्च करके हम देख सकते हैं कि रियल इम्यूनिटी, ये न्यूट्रलाइजिंग इम्यूनिटी है या नहीं, और है तो हम कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो सब करके हम बाद में लोगों को इम्यूनिटी पासपोर्ट या कार्ड दे सकते हैं कि आप सेफली आप हर जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप इन्फेक्ट नहीं होंगे और आप डिजीज ट्रांसमिट नहीं करेंगे, राइट? तो वहां तक जाने के लिए बहुत सारे दिन लगेंगे, अभी तक वो आंसर नहीं है, ठीक है? तो अभी के लिए हमें ये भी नहीं पता कि ये इम्यूनिटी 2 महीने के लिए रहेगा, 3 महीना, 1 साल या परमानेंट, अभी ये भी नहीं पता हमें कि वायरस किस रेट पे म्यूटेट होगा, क्योंकि जो अब तक आया है ये COVID-19 SARS-CoV-2 का स्पेशलिटी ये है कि वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को इन्फेक्ट करता है, तो रेगुलर कोरोना वायरस, सो ह्यूमंस में 7 डिफरेंट कोरोना वायरस स्पीशीज ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है, तो उसमें हमारे जो कॉमन कोल्ड है उसका 30% कॉज एक्चुअली अलग अलग कोरोना वायरस है, बाकी सब ये राइनो वायरस सब है, ठीक है? तो वो अपर रेस्पिरेटरी, हमारा गला नाक उसको इन्फेक्ट करता है, तो उसको इन्फेक्ट करने से बहुत आसान से फैलता है, स्प्रेड होता है, पर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स जो इन्फेक्ट करता है उसी से और सीरियस सिम्टम्स आती है। तो ये SARS-CoV-2 वायरस, आई थिंक ये क्या हुआ कि जब ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना शुरू किया, ये तो बहुत आसान से स्प्रेड हो रहा है, बहुत आसान से इन्फेक्ट कर रहा है, तो म्यूटेशन होने की जरूरत आई नहीं अभी तक। जब हम वैक्सीन या ड्रग या कुछ इंटरवेंशन लेके आएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किस रेट पे ये म्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि सारे वायरसेस उनका जो ये आरएनए रेप्लिकेशन सिस्टम है ये तो बहुत ही एरर प्रोन है, तो हमारे डीएनए सिस्टम, हमारे हायर मैमल्स ह्यूमंस में जब हम एक सेल दो सेल होता है, डीएनए चेंज होता है, उसमें भी कोई एरर्स तो होंगे, पर बहुत सारे एरर और म्यूटेशन करेक्शन सिस्टम्स भी हैं। पर ऐसे वायरस जो है, मैंने कहा 1 लाख 1 करोड़ नहीं, लाख करोड़ जैसे नंबर्स में जब एक वायरस मल्टीप्लाई होता है, ईच वायरस में थोड़ा बहुत डीएनए सीक्वेंस थोड़ा अलग होता है, एक ही बॉडी में, एक ही ह्यूमन बीइंग में, अच्छा। एक ही इन्फेक्शन पे, तो ये वायरसेस म्यूटेट ऑल द टाइम म्यूटेट होते रहते हैं। पॉइंट ये है कि कब इस म्यूटेशंस पे एक सिलेक्शन प्रेशर आए। हम एंटीबायोटिक्स में हम देखते हैं ना, तो एंटीबायोटिक्स लेंगे तो ये बैक्टीरिया मोस्टली हम इसको उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर कुछ 1% या 0.1% सर्वाइव होता है और रेजिस्टेंस डेवलप करता है, वो फिर पूरा स्प्रेड एंड एक्सप्लोड हो सकता है। वायरसेस में भी ऐसे ही, तो अभी तक हमें वो म्यूटेशन रेट भी नहीं पता, सो ये भी एक क्वेश्चन, उसका आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा, और वैक्सीन और ये ड्रग्स हम लेके आते हैं फिर कैसे चेंज होगा वो भी देखना पड़ेगा। सो ये इंडिविजुअल इम्यूनिटी के बाद में, ये हर्ड इम्यूनिटी की बात में, हर्ड इम्यूनिटी ऐसे सोचिए कि आप एक इन्फेक्टेड पर्सन है, आप मे बी एक दिन या आपके इन्फेक्शन पीरियड पे कुछ 20 लोग या 50 लोग से मिलेंगे, और उन 50 लोगों में आप 2 लोगों को आप इन्फेक्ट करेंगे, राइट? सो दैट इज द इन्फेक्टिविटी रेट। तो वो रेट कैसे कम हो सकता है? 1, आप ऐसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे करके आप 50 लोग नहीं, सिर्फ 20 लोग से मिलेंगे या 10 लोग से मिलेंगे, सो ऑटोमेटिकली ये कम हो सकता है। दूसरा, आप अच्छी तरह से हाइजीन प्रैक्टिस करेंगे, मास्क पहनेंगे, मास्क का इफेक्टिवनेस अभी देखना पड़ेगा, हैंड वॉशिंग अच्छी तरह से करेंगे, ये सब करके आप ये इन्फेक्टिविटी रेट भी कम कर सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का आइडिया ये है कि अभी इन सब में असम्पशन ये है कि आपके पास इन्फेक्शन है, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं सब ससेप्टिबल हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, सब इन्फेक्ट हो सकते हैं। उनमें 20 लोग में से 10 लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है या वैक्सीन दिया गया है या रिकवर हो गए हैं, तो उनमें भी ये एंटीबॉडीज सब इम्यूनिटी है। तो आप वो ये ट्रांसमिशन का एक चेन जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं ना वो, क्योंकि 20 लोगों में 10 लोग वो कैरी नहीं करेंगे ये इन्फेक्शन। तो ये थर्ड तरीका है ये इन्फेक्शन ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन तो हम परमानेंटली एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसके बाद और सारे लोगों से हम मीट करना शुरू करेंगे, खरीदना शुरू करेंगे, कुछ एक एक नोट तो देना पड़ेगा किसी को, वहां से वायरस स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये हर्ड इम्यूनिटी का आइडिया है कि आप एक पॉपुलेशन में 40% या 60% इन्फेक्शन जब होता है, इन्फेक्शन से रिकवर जब करेंगे लोग, तब हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगा और उसके बाद वायरस स्प्रेड तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं।
क्या
तो आपको भी पता होगा, तो प्रॉब्लम ये है कि वन हमें पता है कि जो एट रिस्क पेशेंट्स है, ओल्डर पेशेंट्स है, उनमें फेटेलिटी रेट तो बहुत ज्यादा है,
हाँ
10% से ज्यादा। तो ये हर्ड इम्यूनिटी एक पॉलिसी गोल ऐसे या सामाजिक गोल जब हम बनाते हैं, इसमें कितने लोग मरेंगे, 10 लाख, 15 लाख, कैसे? इंडिया में एक नया आइडिया शुरू हुआ है कि नहीं, आप जो ओल्डर पीपल है, 60+ है, उनको आप सेपरेट रखिए, उनसे आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कीजिए, पर हम जो हेल्थी पीपल है, हम सब में नॉर्मल ये स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेड तो होगा ही, तो हम रिकवर करके फिर उसके बाद हम ये डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये तो टू मी हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन जब नहीं होता है, ये तो एक इवेंचुअलिटी है, तो कई समय आउटकम होगा, ये एक गोल जैसे हम नहीं चेज कर सकते हैं, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। पर एंड ये भी देखा है हमने कि इवन इन यंगर पीपल, हमारे 20 साल, 30 साल, 40 साल लोगों में भी बहुत ही एक्सट्रीम केसेस भी हमने देखा है। तो गिवन दैट द इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग सो मच, सो क्विकली, सो रैपिडली, इवन 20 to 60 एज ग्रुप में कितने लोग मरेंगे ये पता नहीं, कितना हॉस्पिटल ओवरलोड होगा पता नहीं। तो लॉकडाउन तो हम अप्रैल के बाद एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली नेशन वाइड या स्टेट वाइड, पर ये हर्ड इम्यूनिटी एक पॉलिसी गोल जब बनता है, ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
हाँ, वही हमें पता ही नहीं कि कितने लोग सिवियरली इफेक्ट होंगे, तो ये इसको ऐसे पॉलिसी गोल चेस करेंगे तो बहुत मुश्किलें आ सकती है। ठीक है पवन, अब मूव हो जाते हैं, अब आते हैं हम लोग ये वैक्सीनेशन, आपने कहा इसके बारे में, तो थोड़ा जल्दी से इसके बारे में भी जान लेते
और ये
हैं।
वैक्सीनेशन ही बेसिकली एक अकेला रामबाण है एक तरह से। अगर एक मतलब पॉपुलेशन वाइड इन्फेक्शन है तो कोई और तरीका दिख नहीं रहा, जैसा तुमने डिस्क्राइब किया है सब। मतलब हम ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हर्बल रेमेडी करके बच जाएंगे, वो तो नहीं हो सकता।
हाँ
हर्ड इम्यूनिटी
क्यों, कोई ड्रग डेवलपमेंट भी हो सकता है ना
कि
सौरभ?
इलाज से, हाँ कि इलाज हो जाए, लेकिन वायरस के लिए इलाज जो है वो बहुत ही बैक्टीरिया में तो एंटीबायोटिक हो जाता है, वायरस के लिए भी ड्रग्स आती हैं, लेकिन अभी तक बाकी डिजीजेज में कोई इतनी बहुत सॉलिड इफेक्टिव दवाइयां तो नहीं दिखी हैं।
बहुत ही सही कहा आपने सौरभ। तो मैं ड्रग्स क्यों कठिन है इसके बारे में दो बात कहूंगा। आप ऐसे सोचिए कि हम ड्रग्स जब बनाते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है ना। कैसे हमारे शरीर में हम विटामिन्स यूज करते हैं, कैसे रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, कैसे हमारे हर एक सेल और ये वायरस पे भी ये लिपिड या फैट का लेयर है ना, उसमें बेसिकली ये ऑयल जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर वाटर और बहुत सारे केमिकल्स, डीएनए, आरएनए सब है। तो आप ऐसे सोचिए कि ये सब सिस्टम्स में बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, ये सब कॉरिडोर में बहुत सारा काम होना चाहिए। तो वहां पर हर एक डोर का एक की और लॉक होता है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो वो नेचुरल सिस्टम्स जो है, वहां पर आप एक मास्टर की जैमर जैसे सोचिए ये ड्रग को। जहां पर रेगुलर की जाता है, आप ये मास्टर की जैमर जाके आप उस डोर को सिर्फ बंद कर सकते हैं या टेम्पररीली क्लोज कर सकते हैं। तो वो क्लोज करने पर वो ह्यूमंस में आप ऐसे करेंगे तो वो पॉइजन हो जाता है, ठीक है। तो पर ये बैक्टीरिया के ऊपर डेवलप करेंगे तो वो बैक्टीरिया को मारेगा। सो बैक्टीरिया का एक क्रिटिकल सिस्टम, जो आप जैसे हमारे ह्यूमंस में किसी भी क्रिटिकल सिस्टम को आप स्टॉप करेंगे तो मृत्यु हो जाती है ना। आप हार्ट या लंग या ब्रेन ऐसे कुछ भी आप स्टॉप करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस पर आप ये ड्रग्स यूज करके कुछ क्रिटिकल प्रोसेस को आप स्टॉप कर सकते हैं, ये
अच्छा,
जैम
उसने
कर
उसकी
सकते हैं।
एक सिस्टम को जैम कर दिया आपने
हाँ, सो बेसिक
बैक्टीरिया।
ड्रग साइंस तो ऐसे आप सोच सकते हैं एट द वेरी बेसिक लेवल। तो बैक्टीरिया जो है हमारे ह्यूमन से बहुत ही अलग है। तो बैक्टीरिया हमारे खून में रह सकते हैं, इन्फेक्शन में, या एक टिश्यू में, या हमारे दिमाग में, बहुत सारे डेंजरस इन्फेक्शन। तो पर ये बैक्टीरिया का जो सिस्टम्स है, उनका डीएनए से आरएनए बनाने का सिस्टम, आरएनए से प्रोटीन बनाने का सिस्टम, ये सब ह्यूमन सिस्टम से बहुत ही अलग है, ठीक है।
अच्छा।
तो ये आप ड्रग या ये मास्टर जैमर जो बनाते हैं, तो वो वहां पर जाके वो मार सकता है, पर ह्यूमन टारगेट्स ज्यादा उनको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम इधर इंजेक्शन या टैबलेट से हम ड्रग लेते हैं, वो टैबलेट तो हमारे शरीर में सब जगह फैलता है। कई जगह पे कोई ज्यादा अफिनिटी होगा, ब्रेन बैरियर क्रॉस करना काफी मुश्किल है, सो ब्रेन तक बहुत आसान से नहीं जाएगा, पर हर जगह स्प्रेड करता है। आप सिंपल जो पेन किलर लेते हैं, आइबुप्रोफेन या कुछ भी, उसका टारगेट जो है, हम जहां पर भी कुछ पेन है ना, वहां पर इन्फ्लेमेशन आता है। इसीलिए पेन किलर्स को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बुलाते हैं। तो वहां पर जो टारगेट है, वहां तक जाना है, पर हमारे स्टमक में ही, सो किसी में भी एसिडिटी प्रॉब्लम हो, हमारे स्टमक लाइनिंग में भी एक टारगेट है इसका। तो वहां पर जाके वो जब हिट करेगा तो हमें स्टमक एक आता है। तो सो साइड इफेक्ट्स जो है इसी रीजन से आते हैं, क्योंकि ये ड्रग का टारगेट है, ये की का शेप है ना, कई अलग जगह में सिमिलर शेप दिखाई देगा, तो वहां पर भी होके वो जैम कर देगा ना। वायरस का प्रॉब्लम ये है कि वायरस बैक्टीरिया जैसे एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस का जो है मिनिमम सिग्नेचर है, मैक्सिमम हमारे बॉडी और हमारे सेल्स का जो फैक्ट्री सिस्टम्स है उसको हाईजैक करके ये यूज करता है, ठीक है। तो वायरस का जो ड्रग टारगेट्स है, दे वेरी वेरी फ्यू इन नंबर, क्योंकि वायरस एक स्टेप है, वायरस कैसे ह्यूमन सेल को एंटर कर सकता है, वहां पर आप ब्लॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, वायरस अंदर जाकर जो उसकी प्रोटीन्स और उसकी सिस्टम्स जो बनाती है उसको आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी, जब वायरस रिलीज होता है, वो रिलीज प्रोसेस पर आप टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अवेलेबल ड्रग टारगेट्स जो है बहुत ही कम है, और बहुत सारे टारगेट्स हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर हैं।
हाँ
तो आपको ये ड्रग डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल है.
अच्छा.
सो मेनली एंटीवायरल ड्रग्स जो हमने बनाया है HIV पे बनाया है एक्चुअली, क्योंकि HIV बहुत सारे दिनों तक, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक रहेगा ना हमारे सिस्टम पर जब फुल ब्लोन इन्फेक्शन होता है, तो उसपे एक कॉकटेल ऑफ ड्रग्स वर्क्स. HIV पे हमने वैक्सीन तो अभी तक नहीं बनाया है. तो HIV के बजाय और एंटीवायरल्स, आप एक डजन या दो डजन एंटीवायरल्स हैं बस. आपने ये H1N1 सीजन पे ये टैमीफ्लू ड्रग सुना होगा. ये टैमीफ्लू का अभी एफिकेसी तो बहुत ही क्वेश्चनेबल है आज भी, सिर्फ एक एक एक्सटेंट तक काम करता है.
बेसिकली बोलते हैं कि 7 दिन की जगह शायद 5 दिन बुखार हो जाए, जो कि अच्छी बात है, पर फिर भी मतलब उससे ज्यादा नहीं होता है कुछ.
हाँ, कॉमन कोड में तो ऐसे ही हम बात करते हैं ना. वो तो हम एंटीबायोटिक लेकर ऐसे बात करते हैं. हम अजिथ्रोमाइसिन तो ट्रम्प इसके लिए भी रेकमेंड कर रहा है. पर सो ड्रग्स के लिए अभी दो अप्रोच है. एक एग्जिस्टिंग ड्रग्स जो अभी मार्केट में है. इस ड्रग्स में कोई ड्रग्स इस COVID-19 पे हेल्प होगा कि नहीं, इसका रिसर्च करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. परंतु अभी क्या हो रहा है कि रिसर्च से पहले ही या वेरी बेसिक प्रिलिमिनरी स्टडी से ही लोग पॉलिसी बना रहे हैं. हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वो मलेरिया और आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर उसका इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स भी है. तो अभी पहली सिस्टमैटिक स्टडीज अभी आ रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसका रिजल्ट नेगेटिव है या नो डिफरेंस जैसा रिजल्ट है. अर्ली स्टडीज वर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, ऐसे पेशेंट्स को दे दो फिर नोट करो कि क्या हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है, कुछ कितने लोग सिम्टम्स रिड्यूस हो रहा है, वो सब वो साइंस में और मेडिसिन में वो तो स्टैंडर्ड बहुत कम है. हमें ये रैंडमाइज डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऑटोमेटिकली रिकवर हो सकते हैं. तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है बताना बहुत ही मुश्किल है. तो इसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करना है, हमें प्रॉपर रिसर्च करना है, अभी तक नहीं हुआ है. दूसरा तो न्यू ड्रग डेवलपमेंट. सो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अजिथ्रोमाइसिन, इसमें तो बहुत ही वीक एविडेंस है सो फार. दूसरा जो है ये गिलियाड फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है. इन्होंने पहले और कोई वायरस पे ये इन्होंने इन्वेंट किया था, उस पे सही से काम नहीं किया. इबोला पे ट्राई किया, वहां पर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ. अभी ट्रायल्स हो रहा है कि ये मे बी इन्फ्लुएंजा या COVID-19 पर काम करेगा कि नहीं.
ठीक है.
राइट. सो ओके, नाउ वैक्सीन्स पर. सो न्यू ड्रग डेवलपमेंट तो हो रहा है. वैक्सीन्स और भी इंटरेस्टिंग है, सौरभ जैसे बता रहे थे कि क्योंकि वायरस के ऊपर वैक्सीन्स वी हैव अ बेटर शॉट. पर और अभी तो 100+ वैक्सीन कैंडिडेट्स लोग रिसर्च कर रहे हैं. तो इस 100+ कैंडिडेट्स में अभी मिनिमम 6 या 7 वैक्सीन कैंडिडेट्स अभी Stage 1 क्लिनिकल ट्रायल्स पर आ चुके हैं. तो वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक और बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, आसान की नहीं. बहुत सारे टाइम हमें एक वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए 10 साल 20 साल लगेंगे, पर हम जो देख रहे हैं अभी COVID-19 रिस्पॉन्स पे, ये स्केल, ये स्पीड, ये साइज, ये मनी पर हमने कभी भी नहीं किया ऐसे वैक्सीन डेवलपमेंट.
अच्छा.
तो ये 100+ कैंडिडेट्स जो है कुछ 8 से 10 डिफरेंट टाइप्स में है. तो अभी 2020 का टेक्नोलॉजी लेकर हमारा ओल्ड टीका जो है ना, आप लुईस पैस्टर तक जाएंगे तो आप स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए ये काउपॉक्स इन्फेक्शन डाल दो, इससे हमारा एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आएगा, कुछ फीवर होगा और फिर हम स्मॉल पॉक्स नहीं कैच करेंगे. और बहुत सारे वैक्सीन दे कॉल देम अटेन्यूएटेड वायरस. ये वायरस ले लो, इसका एक वेरी बेसिक फॉर्म लो जो बहुत इन्फेक्शियस नहीं है पर सेम इम्यून रेस्पॉन्स देता है आपको, उसको डालो दो पेशेंट्स को और फिर आपको उस वैक्सीन से कुछ इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स बनेगा। अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन आइडियाज भी ट्राई कर रहे हैं, ये वायरस डायरेक्शन, ये क्रिस्पर जैसे टेक्नोलॉजी यूज करके, क्रिस्पर में आप हम वायरल वेक्टर बुलाते हैं, ये वेक्टर रूट जैसे वैक्सीन्स भी हम कर रहे हैं। और अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मॉडर्ना एक यूएस कंपनी है, उनका एक वैक्सीन है, ये पहला एमआरएनए वैक्सीन है। सो हमने कहा था ना कि ये वायरस जो है उसका आरएनए हमारे सेल के अंदर घुसकर हमारा सेल का फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम है उसको हाईजैक करता है ना, इसी स्टाइल में ये एक एमआरएनए वैक्सीन, वो एक एमआरएनए ऐसे मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन काम करेगा तो वो भी हमारे सेल के अंदर घुसकर दूसरे कुछ सिस्टम सेटअप करेगा, दूसरा कुछ प्रोटीन सेटअप करेगा ये वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये एक्साइटिंग टाइम भी है क्योंकि ऐसे न्यू अप्रोचेस वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं। पर एंड बेस्ट केस सिनारियो इस 1.5 years में कुछ वैक्सीन आएगा, पर ये बेस्ट केस सिनारियो, ये देयर इज स्टिल अ चांस दैट 2 साल में भी कुछ वैक्सीन नहीं होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन आएगा तो भी हर 6 महीने या हर 1 साल बूस्टर चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वैक्सीन लेकर भी हम सिर्फ एक्सट्रीम सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं पर इन्फेक्शन को हम नहीं रिड्यूस कर सकते, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है।
और वैक्सीन आने के बाद सारी पॉपुलेशन में रोल आउट करना भी एक बड़ा टास्क है, मतलब 100 करोड़ लोगों को, मतलब हम पल्स पोलियो में देख चुके हैं अभियान में, कोई इतना आसान काम नहीं है कि 100 करोड़ लोगों को एक वैक्सीन एडमिनिस्टर करना, वो प्रोसेस में ही 6 महीने से 1 साल लग सकता है।
एब्सोल्युटली सौरभ, इसमें 2 चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक है कि इस वैक्सीन में एक सॉवरेंटी और नेशनलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, से ये वैक्सीन चाइना या यूएस या साउथ अफ्रीका या इंडिया कहीं पर भी डेवलप हो, अब वो इंडिया पर कब आएगा, अलग देशों में कब आएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बिल्कुल, जैसे हमने अगर हिंदुस्तान में बनाया तो पहले हम सब हिंदुस्तानियों को वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों को देंगे, कि ये तो हमारा एक नेशनल ड्यूटी भी है। और सिमिलरली यूएस वाले भी यही करेंगे, वो कहेंगे भाई पहले हम अपने 35 करोड़ लोगों को तो दे दें, फिर उसके बाद में आपका नंबर आएगा।
हाँ, इसमें सिर्फ एक है कि कुछ एफर्ट्स ओपन सोर्स मोड में भी हो रहे हैं, फुल शेयरिंग हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और सरकार इस वैक्सीन डेवलपमेंट को फंड कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट फार्मा डेवलप करेगी को तो वो सब कॉस्ट उनको रिकवर करना ही पड़ेगा।
बिल्कुल,
तो वो एक क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन कौन सा वैक्सीन, मैंने कहा ना कुछ 8-10 अप्रोचेस है, सब वैक्सीन अप्रोचेस को स्केल अप और रोल आउट करने के लिए अलग अलग तरह से प्रोडक्शन फैसिलिटी चाहिए। आपको ये वायरल वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, सब के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री चाहिए आपको। तो गेट्स फाउंडेशन और अलग लोग अभी सोच रहे हैं कि ऐसा फैक्ट्री हमें सेटअप कर देना चाहिए। देयर इज अ गुड चांस ये फैक्ट्री का काम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो वैक्सीन वर्क नहीं हो सकता है, पर अभी के लिए रिस्क कैपिटल को डिप्लॉय करना है, क्योंकि वो फैक्ट्री शुड बी सेट अप एंड रेडी, जब वैक्सीन अप्रूवल आए तो फुल रैपिड रैंप अप होना चाहिए। तो इसमें इंडिया में ये है कि इंडिया में भी कुछ वैक्सीन कैंडिडेट्स डेवलपमेंट हो रहा है, पर इंडिया में बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज है जो अभी वर्ल्ड ओवर दे सप्लाई बिलियंस ऑफ वैक्सीन यूनिट्स। सो इंडिया का जैसा जेनेरिक फार्मा कंपनीज बहुत सारे हैं, वैक्सीन कंपनीज भी बहुत है, तो उनको भी ये ग्लोबल डिस्कशन में एक भाग उनका भी है, क्योंकि ये रैपिड स्केल अप में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल तो होगा ही।
वैक्सीन और फार्मा की दुनिया में इंडिया शायद दुनिया का चाइना है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग पे चाइना है,
हाँ।
हिंदुस्तान का वैसा रोल है, और हमको वो रोल अच्छे से निभाना चाहिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते।
बिल्कुल बिल्कुल
ठीक है प्रणय, ये बहुत मजा आया सुन के, टेस्टिंग और इम्यूनिटी और वैक्सीन और थोड़ा ये समझ में आया कि और कितनी तेजी से हमारी नॉलेज इस चीज में बदल रही है। हमने अपने पिछले पॉडकास्ट एपिसोड में प्रणय याद है हमने बोला था मास्क शायद इतने जरूरी नहीं है, और अभी तो हम बिना मास्क के कहीं जाते नहीं है, मास्क एकदम इम्पोर्टेंट चीज हो गई है। तो वो भी एक बदल गया है हमारे सोचने का तरीका बहुत ही जल्दी, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से आ रही है, और जैसा हमने बोला एक हम इम्परफेक्ट नॉलेज के साथ में कैसे आगे बढ़े, और हमको जैसे ही कुछ दिखता है कि हमने कुछ देखा है जो गलत है हमको वो सही भी फटाफट करना है। तो जैसा वैक्सीन में भी पवन ने बोला, मेरे को सुन के यही लगा कि शायद इम्परफेक्ट वैक्सीन भी आई जो कि आपको पूरी तरह नहीं क्योर करती है लेकिन अगर डिजीज को हल्का भी कर देती है शायद वो भी हमारे लिए, शायद पहले हमारे पैमाने बहुत कठिन है कि बहुत अच्छी वैक्सीन होगी तभी हम उसको करेंगे, लेकिन शायद कोरोना के टाइम में हम इतने ज्यादा कठिन पैमाने नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे यार ठीक है अगर इससे डिजीज हल्का भी हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी हो तो बहुत अच्छा है।
हाँ पर वो वैक्सीन तो ट्रायल सब पास करना है, क्योंकि वो वैक्सीन से कुछ साइड इफेक्ट हो के वो डिजीज से भी ज्यादा इफेक्ट हो जाए या फिर कुछ एक्सप्लोजन जैसा रिएक्शन हो जाए तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इस मास्क पर भी ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अभी ये हैंड वॉशिंग का जो अभ्यास है हम अभी सीख रहे हैं, क्योंकि ये मास्क पहनने पर हम को हमारे फेस को टच नहीं करना है ना, क्योंकि फिर मास्क का पूरा फायदा चला जाएगा, और हम सिविलियंस तो ये सर्जिकल मास्क यूज करेंगे तो ये सर्जिकल मास्क मल्टी यूज मास्क नहीं है,
बिल्कुल ठीक से डिस्पोज भी करना चाहिए।
हाँ एग्जैक्टली
exactly. मुझे काफी अच्छा लगा कि एक्चुअली भारत सरकार ने इस मामले में बहुत अच्छा किया है कि कॉटन मास्क जो धुल सके उसको प्रमोट कर रहे हैं कि आप वो पहनिए rather than ये यूज करने की जगह, और आई थिंक काफी फैलाया जा रहा है काफी जल्दी से, हाथ धोने की आदत तो धीरे से लग रही है पर मुझे लग रहा है कि इस एक इंफोडेमिक आपने बोला है लेकिन सही इंफॉर्मेशन भी आप उसी चैनल से फैला सकते हैं।
बिल्कुल
तो अब टिकटॉक वगैरह पे इतना ज्यादा वीडियोज है मास्क कैसे बनाना है, क्या हाइजीन रखनी चाहिए, कि मतलब कोई सरकारी तंत्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन फैलाने में उतना।
बिल्कुल मैं तो वापस हैंड वॉशिंग पर जाऊंगा, तो क्योंकि वो हैबिट जो है बहुत ही
इम्पोर्टेंट
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं भी देख रहा हूँ कि 90% या 80% ऑफ द टाइम मैं ढंग से हैंड वॉशिंग कर रहा हूँ, बाकी 10% या 20% कुछ मिस्टेक तो मैं कर रहा हूँ, कुछ चीज को मैं टच कर दूंगा
पूर्ति के लिए बस कर दिया या गलत गलती से हाथ धोते समय आपने जो नल है उसको पहले टच किया या बाद में किया, ये काफी
तो ये अभ्यास तो बहुत ही डिफिकल्ट है। और मास्क पहनकर मास्क का एटिकेट जो है कैसे पहनना कैसे नहीं छूना ये सब हमको सीखना है, ये हम सही तरह से सीखेंगे ऐसे हाइजीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे तो ये कोविड नहीं बाद में हमारे समाज के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। हम ये
इसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी काफी हो सकते हैं, इन जनरल जैसा आपने बोला 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सीवियर इन्फेक्शन होते हैं, शायद कोविड की वजह से वो 1,00,000 इन्फेक्शन भी कम हो जाए अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस सोसाइटी में फैल जाए तो।
बिल्कुल
बहुत मजा आया पवन आज की डिस्कशन में, प्रणय खत्म करते हैं यहाँ पे।
हाँ बिल्कुल थैंक्स पवन, हमको बहुत कुछ सीखने मिला और आशा है कि हमारे लिसनर्स को भी ये सीखेंगे और अपना नॉलेज अपडेट करेंगे इस बारे में। थैंक यू।
बिल्कुल थैंक यू प्रणय, धन्यवाद सौरभ।
उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।